नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक है और मोबाइल वाणी के लिए मैं आज समस्तीपुर के अख्तियारपुर में हूँ और हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण है। आज न्यायालय की व्यवस्थाओं पर हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि न्यायालय से जुड़ा उनका क्या अनुभव है। आपका क्या शुभ नाम हुआ
हाँ, मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ,
और उम्र लगभग?
45 वर्ष।
और कहाँ के रहने वाले हैं?
मेरा घर अहमदपुर में है, गंसारा पंचायत के अहमदपुर गांव है।
जी, और ये किस जिले में आता है और प्रखंड में?
समस्तीपुर जिला के सहरंजन प्रखंड में।
अच्छा, तो आज जो चर्चा होनी है अदालत या न्यायालय की व्यवस्था पर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अगर किसी को कोई विवाद होता है तो कैसे वह तय करते हैं कि उनको कोर्ट जाना चाहिए या यहीं पर पंचायत से या और माध्यम से निपटारा होना चाहिए?
देखिए, दो तरह से लोग मैंने न्यायालय में जाते हैं। एक तो ये होता है कि एक जबरन, क्या कहता है, मजबूरी में कोई मुकदमा कर देता है तो उसको लेकर के जाना पड़ता है,
अच्छा
या नहीं
अच्छा
तो हम लोग जैसा आदमी जो है, हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव में ही निपटारा हो जाए।
अच्छा
गांव का जो ग्राम कचहरी है उसके माध्यम से, गांव में जो कुछ पुराने लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसको
जी
पंचायती के माध्यम से सामाजिकता के स्तर पर फरियाते हैं, तो
अच्छा
वो हम लोगों का मन मिजाज उस टाइप का होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई केस कर दिया हमारे ऊपर, तो हमको तो न्यायालय जाना ही पड़ता है।
अच्छा कोई अगर मुकदमा कर दिया तो आपको जाना, तो ठीक
हाँ,
है, इसकी जानकारी कैसे आपको मिलती है कि आपको पर कोई मुकदमा कर दिया है?
इसको लेकर के देखिए दो तरह से होता है। एक तो जो थाने में अगर केस होता है तो चौकीदार या वहाँ का जो पुलिस है वो इन्फॉर्मेशन करता है, चौकीदार नोटिस लेकर के आता है।
अच्छा,
और दूसरा, अगर कोर्ट में डायरेक्ट केस में कर दिया जाता है तो कोर्ट से फिर थाना में आता है और थाना के माध्यम से नोटिस आता है, तब मालूम होता है कि हमारे ऊपर मुकदमा हो गया।
तो नोटिस आता होगा तो लोग बहुत घबरा जाते होंगे एकदम से।
बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस का नाम सुनते ही, केस का नाम सुनते ही, जेल का नाम सुनते ही मैंने पूरा घबराहट हो जाता है कि अब क्या होगा, जेल में जाने के बाद कब छूटेंगे, तब तक बाल बच्चा क्या खाएगा, तरह तरह का मतलब है।
अच्छा, तो लेकिन एक चीज है कि जब ऐसी घबराहट वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग क्या करते हैं, या आपने क्या किया था? आपको पता चला कि आपके ऊपर केस हो गया तो आपने क्या किया?
मेरे ऊपर जब केस के बारे में सूचना मिली कि आपके ऊपर केस है, नोटिस है, तो हम सबसे पहले ये हमारे ऊपर जो केस हुआ था उस समय बिहार का जो पंचायती राज व्यवस्था अभी लागू है वो नहीं था, पेंडिंग था, है ना।
अच्छा अच्छा हाँ,
तो उस समय में वो थाना और एक मुखिया हुआ करते थे पंचायत में,
अच्छा
तो
अच्छा
हम लोग, हमारे ऊपर जब नोटिस आया तो हम फिर दौड़े दौड़े नोटिस लेकर के, जो हमारे मुखिया थे, पूर्व मुखिया विजय कुमार सिंह अभी जिंदा हैं,
जी,
और एक सरपंच साहब के, भूतपूर्व हो गए सरपंच साहब, श्री सॉरी बुटली सहनी जी, तो उनके यहाँ हम गए थे समझने बुझने के लिए कि मेरे ऊपर ये इस तरह का केस है, कैसे होगा क्या होगा। वो लोग संतावना दिए थे कि भाई केस हो गया तो फिर बात नहीं, घबराने का बात नहीं है, कोर्ट जाना
अच्छा
पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा, बेल कराना पड़ेगा।
अच्छा
वहां लगा था कि भाई कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, समस्तीपुर कैसे जाएंगे, लेकिन
जी
जब केस है तो जाना ही पड़ा हम लोगों को, अपना कर्जा पैसा लेकर के। जैसे भी हुआ तो
जी
हमारे जो ग्रामीण सरपंच थे और मुखिया जी थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा था, मदद, वैचारिक मदद करने में, उनको
जी
जो लोग ले गए हमारे साथ कोर्ट में, गए
जी
वकील कर दिए और वकील के माध्यम से सारा काम हुआ था।
अच्छा, तो आप उन्हीं के पास क्यों गए? मतलब ये नहीं समझ में आया कि आप मुखिया जी या वकील उस सरपंच साहब के पास जाने का क्या वजह था?
देखिए, उस समय लगा कि भाई अगर मुखिया जी के पास जाएंगे, मुखिया जी या सरपंच साहब जो नोटिस भेजवाया है या दरोगा जी को बोल देंगे तो हमारे ऊपर केस खत्म हो जाएगा, है ना।
अच्छा
एक उम्मीद लेकर के गए थे कि वो
ओ
मुखिया जी हैं, वो सरपंच साहब हैं, उनको अगर हम इस बात को रखते हैं, बात करते हैं, तो उनका मैंने बात का वजन है, वो अगर बोल देंगे थाने में थानेदार को तो मेरे ऊपर से केस खत्म हो जाएगा, या वकील को बोल देंगे तो केस खत्म हो जाएगा, इस
अच्छा
उम्मीद से गए थे उनके यहाँ।
वाह, बहुत अच्छा। लेकिन आप तो इस उम्मीद से गए थे, अब वो सरपंच साहब नहीं रहे, अब वो मुखिया जी नहीं रहे। आज अगर किसी को केस होता है किसी पर
जी
केस होता है तो, या किसी को केस करना होता है तो किन लोगों से लोग मिलते हैं?
वो आज भी वही सिस्टम है सर,
अच्छा
जो कि जब कोई तरह का बात हो, केस करना है या केस हो गया, अगर मान लिए कि केस करना है तब भी गांव में जो फरार आदमी है
हाँ
ना, उनका राय मशविरा निश्चित रूप से लोग लेने जाते हैं। वार्ड मेंबर है, पंच है, सरपंच है, मुखिया है, तो या गांव में जो मान के चले बुजुर्ग आदमी है, जो जिनको लगता है कि भाई इनके पास नॉलेज है केस कराने का, केस से बचाने का, तो
अच्छा
उनके
अच्छा
यहाँ लोग दौड़े दौड़े सबसे पहले उन्हीं के यहाँ जाते हैं।
तो आपके पास लोग अभी आते हैं कि नहीं?
हाँ, मेरे पास आदमी इसलिए आते हैं कि जब हमारे ऊपर केस हुआ था,
जी
तो केस में हमको 15-16 साल का समय लगा था लड़ने में और उस केस को खत्म करने में, कराने में।
जी जी
तो लोगों को लगता है कि भाई ये केस लड़ने वाले आदमी है, केस के बारे में इनको नॉलेज है, कोर्ट
जी
कचहरी का ज्ञान है, इनको बहुत दिन केस लड़े हैं, तो लोग हमारे यहाँ आते हैं, निश्चित रूप
जी
से आते हैं।
जी तो
जी,
आप उनको क्या सलाह देते हैं?
तो हम उनका सबसे पहला ये सलाह देते हैं कि देखो भैया, हम केस लड़े हैं, अगर कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट में वकील को फीस देना पड़ेगा, हाकिम को फीस देना पड़ेगा, महीना में 2 बार आपको दौड़ना पड़ेगा। बढ़िया होगा कि गांव में ही इस बात को 2 आदमी 5 आदमी को रख करके ग्राम कचहरी में जा करके एकदम
जी
सस्ता न्याय, गांव से सस्ता न्याय कहीं नहीं हो सकता है ना।
जी जी
थाना पुलिस में जाइएगा, पैसा आपसे भी टानेगा, उनसे भी टानेगा, और
जी
न्याय में भी काफी समय लगेगा है ना,
जी
दुश्मनागत ही बहुत दिनों तक बना रहेगा। इससे बढ़िया है कि गांव में ही इस बात को फरिया लो तो बहुत बेहतर होगा। जी
अच्छा, तो ना आपका तो काफी लंबा अनुभव रहा है
जी
कचहरी का।
जी
तो आप जब मुकदमा के लिए जाते थे, आते थे, सारा काम करते थे, तो आप समझ पाते थे कि कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, ये सब समझ पाते थे? उनकी भाषा इतनी सरल होती थी कि आप उसको समझ पाए?
नहीं, शुरू शुरू में तो 5 साल 7 साल हम कुछ नहीं समझ पाए, ठीक ना,
अच्छा
कुछ
सर
नहीं समझ पाया। जाते थे मुंशी जी जैसे, एक दरखास्त लिखते थे वकील साहब का, उनपर साइन होता था। मुंशी जी जब लिखते थे उस समय भी पैसा का डिमांड करते थे, वकील साहब के यहाँ सिग्नेचर होने के लिए जाता था तो वो भी उस समय भी पैसा मांगा जाता था। उसके बाद बहस करने के लिए हाकिम के यहाँ जब वकील साहब जाते थे उस समय भी पैसा मांगा जाता था, तो हम लोग सीधे सिग्नेचर कर देते थे है ना,
अच्छा सर
और हमारा जो बात होता था वो बात वकील साहब बोलते थे। भाषा हम लोग तो समझ नहीं पाते थे, अंग्रेजी में भी कभी हिंदी में भी, यो राना गरम वगरम, तो हम लोग बूझ नहीं पाते थे। लेकिन जब बाहर निकलते थे तब तो पूछते थे वकील साहब कि भाई आप लोग जो बात किए हम तो समझे नहीं, तो वो बताते थे कि हम आपके बचाव में बात को रखे हैं, जो कि आपको बचाव हो जाए, केस से छुट्टी मिल जाए, इस तरह का भाषण किए हैं।
अच्छा, तो कभी कभी जो अदालत में कई तरह के आदेश होते हैं तो उसकी
जी
कॉपी वगैरह भी आप लोग लेते होंगे?
कॉपी वकील साहब निकालते थे, मुंशी जी, हम लोग नहीं लेते थे, वही पैसा ले लेते थे, वही निकालते थे और बोलते थे कि फाइल मेरे यहाँ रहने दीजिए।
अच्छा, तो आप
हाँ
आपने कभी सोचते थे कि हम भी पढ़ कर देखें कि हमारे केस में क्या हो रहा है?
वो तो बोलता था मुंशी और वकील, बोलता था कि आप समझ के क्या कीजिएगा, आपको समझ से बाहर का बात है, फाइल यहीं पे रहने दीजिए, काम तो हम कर रहे हैं।
अच्छा सही, लेकिन
आप
अब तो चीजें खत्म हो गई हैं, अब
जी
मुकदमा खत्म हो गया है तो फाइल अब आपके पास आ गया होगा,
हाँ, आ गया।
तो कभी आपने उसके बाद भी उसको पढ़ने की कोशिश की कि पढ़कर देखा है कि उसमें जो लिखी हुई चीजें हैं वो आपके समझ में कितनी आती है? क्या आप उसको समझ
मतलब
पाते हैं?
उसमें जो हिंदी में जो लिखा हुआ है कुछ मेटर जो कि मारपीट से संबंधित है कुछ है, तो वो तो समझ जाते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ दफा करके लिखा हुआ है धारा है
जी
ना, तो उसका मतलब हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत कई तरह का 307 कुछ कुछ बहुत तरह उसमें लिखा हुआ है, तो FIR करके, तो उसमें वो धारा को हम नहीं समझ पाते हैं।
अच्छा, तो वो काफी कठिन होता है आपके लिए।
बहुत कठिन, बहुत कठिन, मतलब न्यायालय का भाषा समझना भी बहुत कठिन है, वो क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, वो बहुत कठिन, बहुत कठिन।
वकील साहब आपको समझाते नहीं हैं कि इस चीज का मतलब ये होता है, आपने ये किया जा रहा है इसलिए ताकि ये हो सके।
नहीं, वो समझाने का बात नहीं, बस हाकिम के सामने में खड़ा होकर एक दो बात बोल दिए, पैसा ले लिए, हो गया, वो दफा है क्या है वो, उसका उनका कहना हमेशा होता रहता है, देख भाई इसको आप समझ के क्या कीजिएगा, आप समझ के
अच्छा
क्या कीजिएगा।
सही है। अच्छा लेकिन आपका तो लंबा अनुभव रहा है, तो एक हम लोग ना खर्च पर एक एवरेज समझना चाहते हैं, औसत समझना चाहते हैं
जी
कि अगर 1 महीने का खर्च, जैसे आपने बताया है कि 1 महीने में 2 बार जाना पड़ता है लगभग, तो अगर इस 1 महीने के खर्च को देखा जाए एक मुकदमे
जी
पर, तो एक मुकदमे पर जो टाइपिंग वगैरह या लिखने उखने का, फोटो कॉपी, इन सब को मिलाकर 1 महीने में लगभग कितना खर्च हो जाता होगा?
1,000 रुपया घर से जाने में जो भाड़ा लगता है सो, है
हाँ
ना,
हाँ
उसके बाद मुंशी जी का फीस अलग, वकील साहब का फीस अलग, टाइपिस्ट का फीस अलग, उसके बाद जो है सो वहाँ जो पेशकार होता है
जी
ना, वो कागज को पेश करता है, उनका फीस अलग, तो कई तरह का फीस वहाँ पे लिया जाता है। तो
वाह
1,000 रुपया अभी के दौर में, 1,000 रुपया अगर साधारण केस में लोग जा रहा है
अच्छा
ना,
सर। हाँ
तो
हाँ
महीने का 1,000 रुपया खर्च उसका जो है सो पड़ता है।
और आपके घर से कितना दूर है कोर्ट?
30 किलो, 32 किलोमीटर है हमारे घर से।
अच्छा तो 32 किलोमीटर। अच्छा तो ये सही है कि 30-32 किलो, तो मतलब क्या कोर्ट में जाना जरूरी होता है?
कोर्ट में जाना जरूरी इसलिए होता है कि वकील साहब का कहना होता है कि आप, हम लोग तो पैसा भी जब पुराने हो गए न थे ना,
हाँ
तो पैसा भेज देते थे 2 महीना 3 महीना पर एक बार जाकर के पैसा दे आते थे, लेकिन
हाँ
पैसा में विलम्ब होता था, तो वकील साहब का कहना होता था कि आपको हाजिर होना है ना,
अच्छा
आपको हाकिम देखना चाहते हैं, हाकिम के सामने खड़ा होना पड़ेगा।
अच्छा
तो हम लोग जाते थे भय के मारे, जाते
हाँ
भी हैं, लेकिन उस तरह का कोई बात नहीं होता है, बार बार खड़ा नहीं होना पड़ता है, वो पैसा लेने के लिए वकील साहब का ही रहता है कि आएगा तो पैसा
देगा।
मतलब देगा, नहीं आएगा तो पैसा नहीं देगा। तो वो पैसा का जो उगाही है
हाँ
ना,
हाँ हाँ
वकीलों के द्वारा, मुंशी जी के द्वारा, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तबाही है
अच्छा, तो
सबके
ये जो
यहाँ
जाते हैं इतने दिनों में, क्या
पर।
कभी ऐसा भी समय आया कि ये जो जाते हैं तो आज गए और आज ही आ गए, ऐसा ही होता है ना?
नहीं, ऐसा कि कभी कभी होता है कि हाकिम मैंने मतलब सेकंड हाफ में, सेकंड टाइम में है ना, तो उसमें जब टाइम हो जाता है, या मान लीजिए पैसा को जो समय से नहीं दिए, इतना पैसा दीजिए तो पहले सुनवाई हो जाएगा है ना, टाइम से हो जाएगा, पैसा अगर उसको मन माफी नहीं दिया गया तो लेट करता है वहां से, है ना,
अच्छा
आज
हाँ
जब लेट कर दिया तो फिर वो दरगाही आने के लिए नहीं मिलती है, तो कभी कभी वहां पे रहना पड़ता है, तो और मन तकलीफ में रहना पड़ता
अच्छा, तो उस
है।
पर भी आपका
हाँ,
खर्च होता होगा।
तो रात में जब रहेंगे तो मान के चले रात का भोजन खर्च है, या ठहरने का व्यवस्था है, या किसी संगी साथी के यहाँ रह गए तो नहीं, लेकिन भोजन का तो खर्च लगता है।
अच्छा तो जिस दिन आप जाते होंगे अगर कोर्ट गए, तो उस दिन आपकी कमाई कैसे होती होगी? अच्छा
कोई कमाई नहीं होता है, कमाई पूरा का पूरा बंद हर्जा हो जाता है।
एक और हम लोग सोच रहे हैं कि अगर कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए
जी
जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो जाए, कि आप ऑनलाइन केस दाखिल कर सकते हैं, ऑनलाइन हाजिरी डाल सकते हैं, ऑनलाइन पिटीशन डाल सकते हैं, या ऑनलाइन आप तारीख देख सकते हैं, तो आपको क्या लगता है ये आम लोगों के लिए सुविधाप्रद हो सकता है क्या?
काफी सुविधाप्रद हो सकता है, समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, रास्ते में जो दुर्घटना का भय है रोड
जी
में, धक्का
जी
लग जाना, कुछ हो जाना, कुछ हो जाना, तो ये बहुत ही सुविधाजनक बात हो सकता है।
अच्छा लेकिन जब आप कोर्ट में जाते होंगे तो आपको एक संतुष्टि तो और मिलती होगी कि हम गए तो वकील साहब क्या किए ये हम देख पाए, और घर पर रहिए, जब जब रहते होंगे तब तो ये नहीं पता चलता होगा कि वकील साहब क्या किए नहीं किए।
हाँ, ये एक संतुष्टि होता है आज के, मैंने वारंट अगर नहीं जा रहे हैं, अगर वकील साहब छोड़ देंगे तारीख को तो वारंट हो जाएगा, तो फिर जेल में जाना पड़ेगा, ये भय बना रहता है, बहुत भय बना रहा है। जाने के बाद होता है क्या, अमुक तारीख मैंने गुजर चुका है, अमुक तारीख को हम खुद प्रेजेंट हो गए हैं, फिर आगे का कब तारीख है ये सही जानकारी मिल जाती है।
अच्छा, ये भी सुविधा हो अगर आपके पास कि आप ऑनलाइन ही आपके केस में क्या हो रहा है इसको देख सके या मोबाइल पर सुन सके, तो कैसा हो सकता
बहुत बढ़िया होगा, लेकिन उसके लिए उस तरह का मोबाइल चाहिए। हाँ
है? अच्छा, आपको लगता है कि आपके पास स्मार्टफोन है? अच्छा,
स्मार्टफोन हमारे पास है।
और लेकिन अगर ऑनलाइन होगा तो गांव में लोग, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, उसके पास भी तो बैठकर देख सकते हैं या सुन
हाँ
सकते।
देख सकता है, देखने का तौर तरीका जब आ जाएगा तो देख सकता है।
अच्छा, तो ये आपके लिए क्या क्या फायदा दे सकता है? अगर इस तरह की सुविधा आ जाए तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है व्यक्तिगत?
वो इस तरह से मान के सबसे पहला सुविधा तो ये होगा कि समय का बहुत बचत होगा, वो देखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम सुबह में ही देखेंगे, शाम कभी भी हम रेस्ट टाइम में उसको हम देख सकते हैं।
अच्छा,
और आने जाने का जो लफड़ा है, किराया भाड़ा है, वो भी बचेगा, वो रास्ते में जाने के क्रम में जो दुर्घटना का भय सताते रहता है कि कब लोग जाएगा, कब आएगा, क्या होगा, इससे भी सुरक्षा मतलब उसको महसूस होगा, है ना। और खर्चा का मतलब पूरा का पूरा बचत होगा, और जो तारीख के नाम पर जो आने जाने में पूरा दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, तो उसका मजदूरी भी हर्जा नहीं होगा, वो काम कर लेगा, और वो काम से वो उसका जो है बहुत बड़ा फायदा होगा उसे।
अच्छा, तो एक और मन में सवाल उठ रहा था कि अभी जैसा आपने बताया कि 10 से 15 साल आपको लग गए एक मुकदमा में बरी होने में, जब आप वकील साहब के पास पहुंचे होंगे और बात किए होंगे तब भी उन्होंने यही बताया था कि आपको इतना समय लग जाएगा या
ना,
ऐसे?
वो टाइम नहीं, वो तो बताया कि केस फोल्स है, बहुत जल्दी फरिया जाएगा
हाँ,
और ज्यादा समय नहीं लगेगा, उस तरह से नहीं बताया गया था कि 15 साल और 16 साल का लंबा सा सफर गुजरेगा, है
अच्छा
ना।
अच्छा हाँ
अब तो हम लोग गए थे और उसके बाद वकील साहब कहा कोई बात नहीं, अरे कोई केस न केस है, इसमें कोई जान नहीं, बस 2 को तारीख 4 को तारीख गुजारेंगे, बहस करेंगे, बात खत्म हो जाएगा ये।
हाँ अच्छा, और खर्चा उर्चा के बारे में भी बात किए होंगे कि कितना खर्चा उर्चा लग जाएगा?
वो खर्चा की बात तो वो हम लोग किए थे, तो वाला के पास जिस दिन बहस करेंगे, बहस का शुल्क अलग होगा, तारीख का शुल्क अलग होगा, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन जब केस लड़ना शुरू कर दिए तो विधे विधे इतना बार में पैसा मांगा जाता था, और समय जो लगा वो 15-16 साल का, तो वो काला दिन के रूप में हमको याद है कि भाई ये 15-16 साल का खर्च और समय इतना हमको बैक कर दिया, इतना पीछे कर दिया, हमारे मतलब विकास को इतना बाधित कर दिया, जो देह कांप जाता है सुनकर के, वो दृश्य समझ कर।
अच्छा, तो आप ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें मुवक्किल कोर्ट पहुंचे और वहां उसकी शिकायत को जानने के बाद यह बता दिया जाए कि इस केस में आप इस केस को दायर करते हैं तो आपको इस केस के निष्पादन तक में लगभग इतना समय लग जाएगा, इतना पैसा खर्च होगा, एक आंकड़ा दे दिया जाए, तो वो कैसा रहेगा लोगों के लिए समझना और मुकदमे के बारे में जानना?
वो जो मतलब एक आंकड़ा वकील अगर बता दे कि इस केस में इतना रुपया खर्च होगा, इतना समय लगेगा, तो वो समझ जाएगा जो केस करने के लिए गया है। ज्यादातर केस तो फसवल होता है, जायज केस बहुत कम ही होता है, तो
अच्छा,
जो करने के लिए गया है वो तो उसके मन में रहता है कि इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना दिन का समय लगाएंगे, तो उसको हम जेल भेज देंगे, है कि नहीं। बस ये मेन मकसद होता है दुश्मनों का कि उसको हम जेल भेज देंगे, और जब जेल चला जाएगा तो वो हम से डरेगा। अगर वो जो केस करने के लिए जा रहा है या हम ही गए, अगर उस तरह से बता दिया जाए कि इस केस में 15 साल 16 साल 20 साल का समय लगेगा, लाख 2 लाख रुपया लगेगा, तो बहुत आदमी केस से डरेगा, है ना, करने से भी डरेगा, लेकिन वो तो होता नहीं है। वकील साहब तो चुटकी बजाते हैं और बोलते हैं कि बस इतना पैसा खर्च होगा एक से दो दिन में, और उसको हम जेल भेज देंगे, उसको हम जेल से निकाल देंगे, उसको हम बरी कर देंगे, उसको हम सजा करा देंगे, ठीक ना। तो इसको लेकर के मतलब लोग मुकदमा में रुचि लेने लगता है कि चलो भाई इतना सा खर्चा करेंगे तो हमारा जो दुश्मन है उसको हम परास्त करेंगे, वो हम डरे, ये भय उसके अंदर हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन होता वो नहीं है, वकील साहब बोलते कुछ और हैं, और फिर जब लोग लग जाता है, जब बच जाता है तो तब दूसरे तरीके से जब तहसीली होता है तब लगता है कि भाई ये तो बहुत मतलब गलती कर गए हम,
अच्छा
फंस गए हम, फंस गए।
अभी आप लोगों को अगर कोई आता है तो उसको सुझाव देते हैं कि कोर्ट मत जाओ,
बस बस मेरे पास ऐसे अगर कोई आता, हाँ मेरे पास अगर आता है तो हम वही सुझाव देते हैं कि भैया केस मुकदमा से बचो, अगर किसी तरह का पेंशन है कहीं पे लगता है कि हमारा हकमारी हो रहा है तो वो उसको गांव में निपटारा करने का कोशिश करो।
क्यों क्यों ऐसा सोचते हैं आप, क्यों?
इसलिए सोचते हैं कि वो जो समय लगता है कोर्ट कचहरी का वो बड़ा ज्यादा समय लगता है, और वहाँ जायज नाजायज बातें से होता है, है कि नहीं? वो वहाँ जैसे अपना अगर हम कहानी सुना दें आपको थोड़ा सा, एक दो मिनट का अगर समय आप हमको दीजिएगा, तो जिस केस में हम जेल गए थे बेल होकर के आए, उस केस में हमारा कहीं से कोई मतलब कोई गलती नहीं था, हमने जो हमारे ऊपर केस किया था उसके साथ हमारा कोई मतलब टेंशन नहीं था, कोई गलती नहीं था, कुछ नहीं बिगाड़े थे। लेकिन दूसरे आदमी के कहने पर, दूसरे आदमी से हमको मतलब दुश्मनी था, वो आदमी उस आदमी को कह करके और केस में हमको फंसाया,
अच्छा। है ना?
और जब कुछ दिन बीता तो जो केस किया वो भी रिलाइज किया कि भैया आपसे तो हमको कोई टेंशन नहीं था, अमुक आदमी के चक्कर में हम आपको नाम दे दिए,
अच्छा अच्छा,
आपका नाम पड़ गया लेकिन आप इस केस में नहीं है। तो कहने का मतलब है जो केस ज्यादातर वहाँ पे जो है सो अनलीगल केस, कोई मतलब जायज केस नहीं होता, झूठ फूस जोर करके जैसे फंसा दिया जाता है उसमें,
अच्छा
हाँ।
तो इस वजह से आप कहते हैं कि लोगों को नहीं जाना चाहिए।
हाँ 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 वहाँ जहाँ तक न्याय का बात है, कचहरी से न्यायालय से जो न्याय मिल रहा है, वो कहने के लिए है कि उसको न्याय मिला। हमारे साथ चार आदमी थे एक केस में, ठीक ना, और उसमें दो आदमी निश्चित रूप से उस कांड को किया था, शामिल था कांड में, घटना में, और हम दो आदमी उस घटना में कहीं से नहीं थे, ठीक ना। लेकिन जब 16 साल के बाद जब क्या कहता है रिहाई हुआ हम लोगों को, तो हमारा हमको भी छुट्टी हो गया उस केस से, और जो घटना में शामिल आदमी था दो आदमी उसको भी छुट्टी हो गया। तो इससे हमको समझ में है, माथा मगज बैठा हुआ है कि वहाँ न्याय नाम का चीज कुछ नहीं है, हाथ बना करके अगर मान लीजिए कि जो फंस गया तो फंस गया, बच गया तो गलती करने वाला भी बच जाता है वहाँ,
अच्छा
हाँ वो भी बच जाता है।
चलिए, अगर जिस तरीके से आप मोबाइल वाणी सुनते हैं, अगर मोबाइल वाणी भी आपके मुकदमों के लिए कोई एक अच्छा ऐप डिजाइन करे, या जिस तरीके से मोबाइल वाणी सुनते हैं उसी तरीके का IVR पर, मतलब फोन करके आपको सुनने का कोई सुविधा हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा?
बहुत अच्छा रहेगा। जिस बात को हम सुनने के लिए समझने के लिए कोर्ट कचहरी में जाते हैं 32 किलोमीटर दूर, है कि नहीं, वकील के चक्कर में पड़ते हैं, फीस देते हैं, समय गमाते हैं, उस हिसाब से अगर इस तरह का ऐप डेवलप हो जाता है तो वो घर बैठे मतलब कभी भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
चलिए, ये बहुत अच्छा रहा रविंदर जी, और आपकी आपके द्वारा साझा की गई जानकारी निश्चित ही न्याय की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि हम लोग इसको उच्चतम न्यायालय तक ले जाएंगे, ताकि यह जो आपका अनुभव है वो और आसान हो सके और इतना कठिन न रहे। धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद।